साक्षात श्री राधा रविंद का अभिन्न स्वरूप है और श्री राधा रानी की दिव्य कांति लेकर श्रीमन महाप्रभु इस मही पर पधारे, कि पात्र अपात्र का बिना भेद किए हुए इस पृथ्वी के संपूर्ण प्राणियों के शुष्क अंतकरण में कृष्ण माधुर्य रस की धारा का प्रवाह कर सके, सबकी रचना पर, सबके हृदय में, सबकी चेतना में, सबकी क्रियाओं में कृष्ण भजन, श्री राधा माधव के चरणारविंद का अनुराग मूर्तिमंत हो उठे और यह जीव इस आवागमन के चक्र से, विवर्त से मुक्त होकर भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर सके। और श्रीमन महाप्रभु का जो रूप है वह है अनंत, क्योंकि अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत सौंदर्य के विषय में आचार्य चरण कहते हैं अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह। अखिल रसामृत सिंधुओं का जो सार है वह श्री कृष्ण का माधुर्य है, श्री कृष्ण का सौंदर्य है। और उस श्री कृष्ण माधुर्य सिंधु में जब श्रीमती राधा रानी अवगाहन स्नान करके चलती हैं तो उनके अंचल से अनंत सिंधुओं का निरंतर वर्षण होता रहता है। जैसे कोई स्त्री, कोई माता जमुना जी में मलमल की साड़ी पहनकर जमुना जी में स्नान करे और जमुना जल में भीगी हुई उस साड़ी से ही अपने घर की ओर प्रत्यावर्तित हो, अपने घर की ओर वापिस लौटे और उसके अंचल में जैसे बूंद बूंद, बिंदु बिंदु, बिंदु बिंदु जमुना जल टपकता हुआ उसके घर तक की भूमि को अभिसिंचित कर दे, उसी प्रकार श्री कृष्ण के अनंत रस सिंधु में स्नान करके जब प्रिया जी चलती हैं तो साधारण स्त्री के तो अंचल से बिंदु बिंदु निपतित होते हैं, लेकिन श्री राधा रानी के अंचल से सप्त सप्त सिंधु निपतित होते रहते हैं। जिन सिंधुओं के विषय में प्रबोधानंद सरस्वती पाद जिसका विवेचन करते हैं, वैदग्ध सिंधु, रनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु मे हृदय केलि सिंधु। उन अखिल रसामृत सिंधु सार श्री विग्रह नंदनंदन गोविंद का जो अचिंत माधुर्य है, नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का जो अनंत लौल्य है, सौख्य है, सौमनस्य है, नख से लेकर शिख पर्यंत जिनकी अत्यंत रूप माधुरी के आस्वादन से विभल चित्ता वन में गए हुए परमहंस गुरुदेव सुखदेव निज आश्रम में प्रत्यावर्तित होकर श्रीमद् भागवत को आत्मसात करके और अपने मुख चंद्रमा में से उत्प्लावित करके कलिकाल की अग्नि में भस्म हो रहे प्राणियों के सुष्ट अंतकरण में जिस अमृत कालिंदी का प्रवाह कर रहे हैं, उस रस माधुर्य की अनंत लालसा और अत्यंत महा आनंद के महारणव नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत रूप माधुर्य की उच्छलित अनंत तरंगों के अत्यंत महासिंधु जब घन रूप में समुदित होकर इस मही के ऊपर प्रकट होते हैं, तब श्री राधा रानी की कांति और ब्रज के रस माधुर्य से परिपूर्ण श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु के रूप में समुदित होकर पात्रा पात्र विचार नम न कुरुते न स्वम परम विच्छते देया देय विमर्शको नहि नवा काल प्रतीक्ष प्रभो सद्यो यस्त्र वणे क्षण प्रणमन ध्यानादिनाम दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सैव भगवान गौरव परम मेघति। फिर जगन्नाथ और माधव जैसे पतित हो अथवा हरिदास जैसे शरणागत हो अथवा षड गोस्वामी पादों में अपनी ही निज कृपा शक्ति को प्रतिष्ठित करके रसमाधुरी के प्रवाह और ब्रज की अनंत महिमा को ब्रह्मांड व्यापी करने के लिए श्रीमन महाप्रभु की महती कृपा ही श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई है। उनके आगे पहले ही लिखा हुआ है श्री रूप गोस्वामी पाद। रूप किसका है? स्वयं श्री राधा रानी का रूप किसका है? हमारा आपका जो रूप है वो नश्वर है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। जिंदगी में एक दिन आता है जब शीशे के सामने से हटने का मन नहीं करता, लेकिन उसी शरीर में एक दिन ऐसा भी आता है जब शीशे में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का जो रूप है वो नित्य नवीन है, नित्य नूपन है, नित्य आनंद प्रदान करने वाला है। श्रीमन महाप्रभु का जो रस माधुर्य है वह नित्य है, शाश्वत है, अनादि है, अखंड है, अनंत है, अनूप है, वेद से परे है, नेति नेति कहकर संपूर्ण शास्त्र समुच्चय जिनके चरणों में शरणागत होकर प्रार्थना पूर्वक यह पुरुषार्थ और प्रयास कर रहे हैं कि कभी कोई जन्म हमें जीवन में ऐसा प्राप्त हो सके जब महाप्रभु की कोई कृपा किरण हमारे अंतःकरण में प्रकाशित हो उठे, जैसे सूर्य की प्रथम किरण का स्पर्श करते ही जलाशय में कमल विकसित हो जाता है और उसके गर्भ में भरा हुआ मकरंद उसके पत्रों पर किरण होकर अपनी ओर भ्रमर का आवाहन कर लेता है और जलाशय उस कमल के मूल में पड़ी हुई कीचड़ की ओर बिना ढणा किए जैसे भ्रमर उसके गर्भोच्छलित मकरंद का संसेवन करने के लिए जलाशय की ओर चल पड़ता है, ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से हमारे अंतकरण में सूखा हुआ जो कृष्ण प्रेम का बीज था और पड़ा हुआ था जिसे उत्तम ऊर्जा नहीं मिल रही थी, जल नहीं मिल रहा था, प्रकाश नहीं मिल रहा था, वो कृष्ण नाम जो हमारी वासना कामना देहिषणा कलत्रैषणा वित्रैषणा यशैषणा की ओर आसक्त और आकृष्ट हुई पाषाणवत हृदय के ऊपर बीज के रूप में पड़ा हुआ था लेकिन भक्ति कल्प तरु के रूप में विकसित नहीं हो रहा था। एक कृष्ण नाम जीवेर जतो पाप हरे जीवेर साध्य नाई ततो पाप त्वरिते पारे, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार तथापि यदि ना बहे अश्रुधार ताहिला जानिबे अपराध साक्षय प्रचुर कृष्ण नाम बीज मात्र ना होए अंकुर। एक तरफ तो एक कृष्ण नाम इतने पापों को नष्ट कर सकता है जितना पाप करना मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वही कृष्ण नाम प्रभात से निशीत तक और शैशव से जरा तक निरंतर उसका उद्घोष रटने और नाम संकीर्तन करने के बाद भी आंखों से वासना कानों से निंदा श्रवण की उत्कंठा हाथ पैरों से असद व्यवहार की निवृत्ति न हो तो यही समझिए कि वह कृष्ण नाम हमारे हृदय पाषाण के ऊपर बीज के रूप में पड़ा हुआ है। अभी कोई ऐसा सत्संग सरोवर नहीं मिला जिससे उस बीज को जल मिल जाता, अभी कोई ऐसा संत की चरण रज नहीं मिली बिना महत्पाद रजोभिषेकम किसी संत की चरण रज रूपी खाद नहीं मिली। इस बीज को संत की चरण रज रूपी खाद मिल जाए और सत्संग के सरोवर से कृष्ण प्रेम के आंसू आंखों में मिल जाए और हृदय में कृष्ण विरह का ताप मिल जाए, जैसे उत्तम यूरिया उत्तम पानी और सूर्य का प्रकाश उस बीज को वृक्ष में परिवर्तित करके अनंत मीठे फलों से युक्त कर देता है, ऐसे ही हमारे हृदय में पड़े हुए इस कृष्ण नाम को वृक्ष के रूप में परिणत करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी पाद को वृंदावन में प्रेषित किया ताकि उनकी रस माधुर्य धारा में अवदाहन करके वासना और कामना देहिषणा आदि पदार्थों की ओर अग्रसर होने वाला यह पतित जीव इसी शरीर में इसी समाज में इसी परिकर परिवेश में इन्हीं नाना प्रकार की मान्यताओं में से मुक्त होकर जीवन के उस अविच्छिन्न असमूर्ध पर तत्व लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसे प्राप्त करने के लिए ही उसे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उपलब्ध हुआ है।
जैसे उस कमल के अंदर भरे हुए मकरंद के सूर्य किरण का स्पर्श करते ही उच्छलित हो जाता है, उसी प्रकार इस वासना कामनाओं के संसार में भरे हुई कीचड़ में अगर हमारे हृदय में भक्ति रूपी कमल खिल उठा और भक्ति रूपी कमल के अंदर भरा हुआ श्री राधा गोविंद के प्रेम का मकरंद उच्छलित हो गया तो निश्चित रूप से ही वो कृष्ण भ्रमर संपूर्ण हमारे दोषों को न देते हुए पात्र और अपात्र का विचार बिना किए हुए दौड़ते हुए आएंगे और हमारे ऊपर कृपा की वर्षा कर देंगे। और अगर किसी संत की कृपा हो गई तो विधि विधान से रहित मर्यादा आदियों से रहित चाहे शूद्र हो ब्राह्मण हो सन्यासी हो यति हो पठित हो अपठित हो वृद्ध हो जवान हो बाल वृद्ध वनिता किसी भी जाति वंश परंपरा के क्यों न हो किंतु अगर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर संत कृपा का अनुग्रह हो गया तो विधि विधान से रहित होने पर भी ये वही भगवता प्रोत्ता उपाया यात्मलब्धे अंजह पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता हितान ज्ञानास्थाय नरो राजन यत्प्रमादेत कर्यचित धावन निविल्यवा नेत्रे न स्खलेति न पतेति च आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ो। श्रीमद् भागवत कह रही हैं और श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम, मेरा प्रमाण क्या है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ो। अगर संसार में किसी से कहें कि यहां से डोड़िया मठ से पट्टी बांधकर ज्ञान बुद्धि तक दौड़ो तो आप कहोगे दुश्मनी निकालना चाहते हो, कितने गड्ढे कितनी नाली कितने मोड़ कितने प्रकार की विपत्तियां अगर उसमें कहीं हम गिर पड़े, किसी गड्ढे में गिर पड़े नाले में गिर पड़े हाथ पर टूट जाएंगे मर जाएंगे माता फूट जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत कहती हैं भगवान के चरणार बिंदु में विश्वास करके विश्वास की पट्टी आंखों पर बांध कर और भक्ति के मार्ग पर अगर तुम दौड़े, बोले अगर दौड़े और गिर पड़े तो बोले गिर पड़ो तो पट्टी खोल कर देख लेना, वो गाड़ी नहीं होगी वो गड्ढा नहीं होगा वो दीवार नहीं होगी, या तो तुम गिरोगे नहीं और यदि गिरे तो फिर राधा रमण के चरणों में गिरो। न स्खले न पते न स्खलन हो जाना पतन हो जा फिर आप किसी परिस्थिति में कर्म प्रपंच में आबद्ध नहीं होगे अपितु जीवन की अनिर्विण उस लक्ष्य में हमारा पतन हो जा जिसको पाना ही इस मनुष्य शरीर का उपक्रम है उपयोग है चरितार्थता कृतार्थता है इसकी पूर्णता है और इसका समलंकरण है अलंकरण है इसकी प्राप्ति की ही समुठ भाव वृत्ति का ही जीवन में वह प्रवेश हो। श्री रूप गोस्वामी पाद के ऊपर कृपा करने के लिए ही महाप्रभु उनके ग्राम में पधारे और श्रीमन महाप्रभु के स्पर्श मात्र से ही आचार्य चरण में जो महाप्रभु अभी आपने कहा जैसे हास्य भी भक्ति है महाप्रभु भी बड़े कौतुकी किसका स्पर्श कर दे। जब महाप्रभु वृंदावन से वापिस जा रहे थे कीर्तन करते हुए आजान लंबित भुजऊ, जब महाप्रभु चलते थे तो ऐसा प्रतीत होता था सोने का पहाड़ ही चला आता हो, कीर्तन करते हुए चले जाते थे उसी समय एक ग्रामीण व्यक्ति एक मिट्टी के घड़े में और बहुत सारा मठा भरकर लगभग 15 लीटर मठा भरकर और बेचने के लिए चला। जब वो ग्राम से बाहर निकला उसी समय श्रीमन महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे थे, महाप्रभु ने उसकी ओर देखा और उससे कहा कि भाई लंबी यात्रा से और निरंतर नाम संकीर्तन से मेरा कंठ थोड़ा सूख गया है, आप थोड़ा सा मुझे अपना मठा पिलाएंगे। उसने कहा जरूर पियो। अद्भुत आकर्षित महाप्रभु का दिव्य चिन्मय अलौकिक स्वरूप देखकर वह आनंदित हो उठा, जरूर पीजिए आपके पास कोई पात्र है। बोले मेरे पास तो कोई पात्र नहीं है, मैं तो विरक्त महात्मा ऐसे ही भ्रमण किया करता हूं, मेरे पास कोई पात्र नहीं है, आप चाहो तो आपके घड़े से ही पी लूं। उसने देखा ऐसा अद्भुत महाप्रभु का दिव्य स्वरूप अरुण बिंब से अधरार बिंद मानसरोवर में मोती ठाकर एक पंक्तियों में ही उड़ने वाले हंसों के समान शोभायमान जिनकी दंत पंसियां अष्टमी के चंद्रमा के समान जिनका ललाट पटल बर्फ से आच्छादित कैलाश पर उतर आई काली काली घटाओं के समान जिनके चंद्रमुख पर आंदोलित होने वाली कुंतल अलकावली ऐसे अद्भुत मुठारविंद को देखकर वह बड़ा आकृष्ट हुआ। उसने घड़ा दे दिया, लीजिए साधु आपको जितना पीना हो पी लीजिए। और महाप्रभु ने घड़ा लगाया और गटर 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 वो सोच ही रहा था कि महाराज 15 लीटर मठा महाप्रभु पी गए। भाई बड़ा तगड़ा महात्मा मालूम पड़ता है, 15 लीटर मठा पी गए। सबरा घड़ा उसने उल्टा किया, एक बूंद मठा नहीं भरा। अच्छा भाई, महाप्रभु हरि बोल करते हुए चल दिए। वो गामवाला पीछे भागा, अरे महाराज पैसे तो दो। बोला मैं तो भिखारी, मेरे पास पैसे कहां से आए? ये तो बात हुई नहीं थी कि प्यास बुझाने के बदले पैसा देना पड़ेगा। अरे भाई मुझे पैसा दीजिए। बोले पीछे मेरे दो साधु आ रहे हैं, उनसे पैसा ले लेना। महाप्रभु कीर्तन करते हुए चले गए, पीछे पीछे दो वैष्णव आए। उन्होंने कहा भाई ठहरो, वो तुम्हारे गुरुजी 15 लीटर मेरा मठा पी गए हैं और कह गए हैं पीछे आने वालों से पैसा ले लेना। तो मालिक तो चला गया, तुम पैसा दो। बोले महाराज जब मालिक पे ही पैसा नहीं है तो नौकर पर पैसा कहां से आएगा? जैसा मालिक है वैसा ही नौकर, वो भी महाराज वैरागी, हम भी वैरागी। महाराज हरि बोल साधु के पास देने को और होता क्या है, वो भी चल दिए। राम माले ने कहा चलो बहुत बढ़िया है, आज साधु सेवा हो गई। अपने घर चला, खाली घड़ा माथे पर रखकर चला। एक कदम उसने रखा, घड़ा थोड़ा भारी हुआ। दूसरा कदम रखा और भारी हुआ। 10 कदम बाद तो घड़ा इतना भारी हो गया उठाए नहीं उठता था। बड़े जतन से उसने घड़ा नीचे उतारा तो घड़ा मणियों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के रत्न भरे हुए थे और किरणें निकल रही थी। चिंता मणि और पद्मराज मणि और वज्रराज मणि, बड़ी बड़ी मणियों से वो कलश आपूरित था। ग्रामीण एक क्षण के लिए तो प्रसन्न हुआ, लेकिन दूसरे ही क्षण गंभीर हो उठा। अरे साधु था बड़ा विचित्र, जिसने मिट्टी के घड़े को छूकर रत्नों से भर दिया। अगर वो इस मिट्टी को छू दे तो इसके अंदर कौन सा रत्न नहीं भर सकता। उन रत्नों से भरे घड़े को छोड़कर वो पीछे पीछे दौड़ा, भगवान ठहरो भगवान ठहरो, और महाप्रभु के चरणों में जा गिरा। हे भगवान आपने उस मिट्टी को तो छू दिया, इस मिट्टी के ऊपर भी कृपा करो। और महाप्रभु ने खींच कर उसके हृदय में लगा लिया। तिजोरी और घड़े की शोभा हो सकती है रत्नों से मणियों से स्वर्ण से, लेकिन जीवन की शोभा होती है जब उसमें कृष्ण प्रेम हो, कृष्ण नाम हो। महाराज वो धनी धनी नहीं है जिसके पास आकर भिखारी धनवान न हो जाए, वो बहुत धनी धनी नहीं है जिसके पास आकर भिखारी धनवान न हो जाए, और वो साधु साधु नहीं है, वो वैष्णव वैष्णव नहीं है जिसके पास आकर दुराचारी भी राधा गोविंद का दास न हो जाए। जिसके पास आने पर जैसे सड़ी हुए गले हुए जंग खाए हुए लोहे को स्पर्श करने पर, पारसमणि का संग होने पर वो जंग खाया लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही साधु संग जिसको मिल जाए, वैष्णव संग जिसको मिल जाए, उसके जंग खाए चिंता से डूबे जरा से आक्रांत जीवन में भी कृष्ण रस भाव की मंगल मंदाकिनी का प्रवाह न हो, ये सर्वदा असंभव है। और श्रीमन महाप्रभु का वह निज रूप ही श्री रूप गोस्वामी पाद के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और वही श्रीधाम वृंदावन में आकर, जैसे आपने विविध ग्रंथों के विषय में ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, और भक्ति रसामृत सिंधु में श्री आचार्य चरण कहते हैं कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। अरे भगवान के चरणों में प्रेम करने वाली बुद्धि प्राप्त कर लो, कहीं से भी मिल रही हो, क्योंकि कोटि जन्म सुकृतैर न लभ्यते। वो 1 करोड़ जन्म के पुण्य से मिलने वाली नहीं है, वो मिलने वाली है तो केवल महाप्रभु की कृपा से। जैसे गंगा की धारा बहुत ऊंचे हिमालय के शिखर से बहती है, लेकिन उस हिमालय के बहुत ऊंचे शिखर के नीचे बहुत सारे शिखर होते हैं जो उस वेगमती धारा को अपने ऊपर धारण करते हैं, और फिर वहां से आगे और फिर आगे गंगा सागर तक गंगा जी जाती हैं। ऐसे ही राधा गोविंद के उस मंगल शिखर से बहने वाली महाप्रभु के आनंद की धारा, और उस आनंद के नीचे अनंत छोटे छोटे शिखर हैं जिसमें अग्रगण्य शिखर है श्री रूप गोस्वामी पाद, जिसके ऊपर से बहती हुई महाप्रभु के कृपा की धारा जब ब्रजमंडल से प्रवाहित होती है, जब उनके अंतकरण से प्रवाहित होती है, तो वो धारा ऐसी है कि जिसमें जो व्यक्ति डूब जाए उनके चिंतन में, उनके ग्रंथ में, उनकी स्मृतियों में, उनके आदेश में, उनके आचरण में जो व्यक्ति डूब जाए। आप यमुना जी में नहाने के लिए केसी घाट पर जाइए, वहां बोर्ड लगे हुए हैं, डू नॉट गो इन टू द वाटर, इट इज वेरी डीप हियर, पानी में न जाए, पानी बहुत गहरा है, जो बिना तैरना जाने उसमें चले गए तो वो डूब जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए आप जमुना जी जाइए, अगर तैरना आता है तो स्विमिंग कीजिए, आपके पास कोई नाव है तो बोटिंग कीजिए, आपके पास कोई काव्यात्मक वृत्ति है, कोई पोइट्रिकल एफिशिएंसी है तो उसके सौंदर्य को देखकर कविताओं का निर्माण कीजिए, आपके पास अगर कोई पेंटिंग का गुण है तो कैनवास लगाकर कोई बढ़िया सुंदर चित्र बनाइए। लेकिन सावधान, अगर बिना तैरना जाने हुए जमुना में कूद पड़े तो भैया मर जाओगे और सारा परिवार रोदन करेगा, सब संकल्प अधूरे रह जाएंगे, सारी योजनाएं महाराज व्यर्थ हो जाएंगी। ये भी निश्चित नहीं है कि परिवार वाले क्रंदन करें, कि परिवार वाले उत्सव मनाएं कि चलो ये कमरा खाली हुआ, आपत्ति यहां से चली गई। हम घर में हाथ पकड़ कर कह रहे हैं अरे मेरे बिना, तुम्हारे बिना घर कैसे चलेगा, घर वाले कह रहे हैं तुम जाओ तो महाराज अच्छी तरह से घर चलेगा, लेकिन व्यक्ति की आसक्ति है। लेकिन यह जो श्री रूप गोस्वामी पाद का जो मंडल में अमृत है, ये जो उनके चिंतन और आनंद की धारा है, इसमें स्नान करने की पद्धति सर्वदा भिन्न है। अगर वहां बिना तैरा जाने वहां डूब गए तो मर जाओगे, इसलिए वहां तैरना ही मंडल में है, अगर वहां डूब गए तो मर जाओगे और यहां डूब गए तो तर जाओगे, अगर वहां डूब जाओगे तो यमराज के पास पहुंच जाओगे, और इस वैष्णव साहित्य में और महाप्रभु की कृपा में यदि डूब जाएंगे तो निश्चित रूप से इस भवसागर से मुक्त होकर भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए नामे रुचि जीवेर द्वया, नाम में जो रुचि हो वह श्री रूप गोस्वामी पाद के सब संपूर्ण ग्रंथों का यही सार है। श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रीति हो, नाम में हमारी रुचि हो, नाम हमारे जीवन का व्यसन हो जाए। अभी नाम हमारे जीवन का नियम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम हमारे जीवन का व्यसन हो जाए। अभी तो दो माला कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो दो माला करते समय भी पत्नी ने गरम गरम हलवा लाकर मेज पर रख दिया, अजी जल्दी करो ठंडा हो जाएगा, मैं गरम करने वाली नहीं हूं, फिर तो चार चार दाने खींचना शुरू कर देते हैं, जल्दी से सुमेरु हाथ में आवे तो हलवा खामे। अभी हमारा भजन नियम है, लेकिन संतों की कृपा हो जाए तो भजन हमारा व्यसन हो जाए। उठते बैठते श्रणवन सुभद्राणी रथान्युपाणेर, भगवान के सुमधुर चरित्रों को सुनकर विलज्ज होकर महाराज अपूर्व भाव से जीवन के उस अनंत समर्पण कृष्ण प्रेम आनंद का हम आस्वादन कर सकें। श्री रूप गोस्वामी पाद ने ललित माधव, विदग्ध माधव, श्री भक्ति रसामृत सिंधु और सब उनके वाई है संपूर्ण दृष्टिकोण का आपने महद महानुभावों से हमारे वृंदावन की शोभा श्री भट्ट जी, श्री बाबाजी महाराज, श्री पुराण गोपालाचार्य जी ने अपने स्तोत्रों में श्री पद्मलोचन माधु रोड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पद्मलोचन गोस्वामी जी महाराज को आप सुनेंगे और सबके श्री स्वामी जी महाराज यहाँ प्रतिष्ठित हैं। लेकिन संपूर्ण आचार्यों का एक ही दृष्टिकोण है, कृष्ण प्रेम हृदय में पैदा हो, श्री कृष्ण के नाम में हमारी रुचि हो। जैसे हम दुनिया की चीजों के बिना नहीं रह पाते, ऐसे ही हमारी जिह्वास्तु में विभला, ये जिह्वा विभल होकर कृष्ण भजन की ओर प्रेरित हो। महाराज हमारा जीवन अभी हम इसके बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन गोपियां कहती हैं दुस्त्यज तक कथार्थ, उद्धव श्री कृष्ण के बिना रहा जा सकता है लेकिन श्री कृष्ण की कथा के बिना नहीं रहा जा सकता। अभी हम चाय के बिना उठ नहीं सकते, एसी के बिना सो नहीं सकते, गाड़ी के बिना चल नहीं सकते, लेकिन जिंदगी में मरने से पहले वो क्षण प्राप्त करना बहुत जरूरी है कि सबके बिना रह सकें, न रह सकें तो राधा गोविंद के भजन के बिना न रह सकें। भजन हमारे जीवन का नई वही सर्जिक अंग हो जाए और वही हमें भगवान के चरणारविंद तक पहुंचा देगा। इसी का प्रयास और कृपा हुई श्री रूप गोस्वामी महाराज द्वारा कलिकाल के जीव के ऊपर। आज जाते जाते भी वो कैसा संदेश दे गए कि हजारों वर्षों के बाद आज किसी परिवार में चले जाइए, आप बाबा का भी चित्र मान लीजिए तो मुश्किल से प्राप्त होगा, किंतु आज 400 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आज हम समवेत रूप में उपस्थित होकर उनके चरणारविंद की महिमा का आस्वादन करके अपने जीवन में एक लक्ष्य, एक राजमार्ग और आचरण को प्राप्त कर रहे हैं, ये महाप्रभु की कृपा है और आचार्य चरण की साधना का वह दिव्य प्रसाद है जो आज भी महक रहा है। कमल तो सूर्यास्त होने पर मुरझा जाता है, लेकिन ये आचार्य श्री रूप गोस्वामी महाराज हैं जो हजारों सूर्य और चंद्रमा का उदय अस्त हुआ किंतु इनका व्यक्तित्व तो एक अनंत ज्योति देता हुआ आज भी कलिकाल के आसक्त जीव को आनंद, समाधान, संत सत्ति और कृष्ण भजन की रुचि प्रदान कर रहा है। ऐसे दिव्य महाप्रभु कृपा स्वरूप श्री रूप गोस्वामी पाठ के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणति पूर्वक, कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं।
भगवान गुरु प्रजानुकूल वर्तते श्री आप गोपा गुरुवचन सार्थक पिता के सारे सद्गुण भूतमान होकर के